एक बात यकीनी है, अगर आप कलाम पर कायम रहेंगे तो आप गवाही के साथ वापस आएंगे। आमीन। जो खुदा आपको आपकी जिंदगी में देना चाहता है वो शिफा नहीं है, जो खुदा आपको आपकी जिंदगी में देना चाहता है वो नौकरी नहीं है, जो खुदा आपको आपकी जिंदगी में देना चाहता है वो पैसा नहीं है, जो खुदा आपको देना चाहता है वो आपकी रूह में खुदा का कलाम है। जी हाँ, वक्त पादरी ये आपको वो बना देगा जिसके बारे में ये बात करता है। जी हाँ, जी हाँ, और अब चमक रहे हैं और अब रूह अल-कुद्स की ताकत से चमक रहे हैं, अब रूह अल-कुद्स की ताकत से चमक रहे हैं, अब चमक रहे हैं और कोई आपको रोक सकता। ये आपका मौसम है, ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है, ये आपकी घड़ी है, फसल आपका है। यीशु क्यों आए? जी हाँ, यीशु शैतान के कामों को तबाह करने आए। ये वो मकसद जिसके लिए खुदा का बेटा हम पर जाहिर हुआ।
ग्रेट कमीशन मूवमेंट, जिसका सर्विस टाइम है सुबह 10 बजे। हमारा राबता नंबर है +92345855175, जबकि हमारा ईमेल है radiolifepk@gmail.com। याद रहे कि ये ब्रॉडकास्ट उर्दू लैंग्वेज में होती है।
और ने भी मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि बाज़ औकात हम अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में इतने मगन हो जाते हैं कि अहम चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम वक्ता फ़ौक़ता अपने आप को उन चीज़ों की याद दहानी कराते रहें जो हमारे लिए अहम है। वो कहते हैं जो बुना करता है वो शैतान का है, खुदा का बेटा जाहिर हुआ कि वो शैतान के कामों को तबाह करे। इसी मकसद के लिए खुदा का बेटा कि वो शैतान के कामों को तबाह करे। फिर खुदा का बेटा हम पर जाहिर हुआ। आप अगर आपने पहले नहीं सुना तो यकीनन आप अब सुन रहे हैं। खुदा के बेटे का मतलब क्या है? खुदा का बेटा होने का मतलब ये नहीं ते कोई खुदा से पैदा हुआ हो। जैसे जब आप कहते हैं जॉन जूनियर जॉन सीनियर का बेटा है कि वो इसका बाप है, इसकी बीवी ने जॉन को जन्म दिया, ये वो मानी नहीं है जिसमें खुदा का कलाम खुदा के बेटे यीशु मसीह के बारे में बात करता है। खुदा के बेटे का मतलब इंसानी जिस्म में खुदा है, यही खुदा के बेटे का मतलब है, यही बाइबल का मतलब है जब वो खुदा के बेटे की बात करती है। और आप जानते हैं यीशु यहूदी माहौल में रहते थे, वो बिल्कुल समझते थे कि इसका क्या मतलब है जब उसने कहा कि वो खुदा का बेटा है, और उन्होंने इससे कहा तुम जो सिर्फ एक इंसान हो और अपने आप को खुदा के बराबर बना रहे हो, और उन्होंने पत्थर उठा लिए ताकि उसे मार डालें क्योंकि उन्होंने कहा कि वो खुदा की तौहीन कर रहा है। ये कहने की जुरत करके कि वो खुदा का बेटा है, वो समझते थे कि खुदा का बेटा होने का मतलब है कि खुदा जिस्म में जाहिर हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इसी वजह से उन्होंने यीशु को मसलूब किया क्योंकि इसने कहा कि वो वाकई कौन है, क्योंकि वो इस पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन ये सच था तो बाइबल कहती है जो हमने अभी पढ़ा, वो आयत जो हमने अभी पढ़ी, इसी मकसद के लिए खुदा का बेटा जाहिर हुआ कि वो शैतान के कामों को तबाह कर सके। शैतान के काम क्या है? पहले हिस्से में ये आपको गुनाह दिखाता है, वो काम करना जो खुदा की मर्जी और मंसूबे के खिलाफ है, बदी, शरारत। शैतान के काम तबाही, बीमारी, दर्द, मुसीबत और यहां तक के मौत भी, क्योंकि बाइबल कहती है कि मौत गुनाह का नतीजा है। इसी मकसद के लिए खुदा का बेटा जाहिर हुआ ताकि वो शैतान के कामों को तबाह कर सके। और आपको याद होगा अमाल की किताब 10:38 में बाइबल हमें यसू के बारे में कुछ बताती है, कैसे खुदा ने नासरत के यसू को रूह अल कुद्स यानी पाक रूह और ताकत से मसह किया जो भलाई करता फिरता था। ये देखें, वो भलाई करता फिरता था और उन सबको शिफा देता था जो शैतान के जुल्म में थे, क्योंकि खुदा उसके साथ था। ये बहुत शानदार है। ये कहता है कि यसु भलाई करता फिरता था, इन सबको शिफा देता था जो शैतान के जुल्म में थे। वो सब लोग जिन्हें यसु ने शिफा दी, बाइबल कहती है कि वो शैतान के जुल्म में थे। ये नहीं कहता कि खुदा ने उन्हें बीमार किया। जब कोई बीमार होता है तो ये खुदा नहीं है जिसने ऐसा किया। बाइबल कहती है कि ये शैतान है, वो शैतान के जुल्म में थे और ये यसु था जो भलाई करता फिरता था और उन्हें शिफा देता था। शिफा देना एक अच्छा काम है, तो यसु उन्हें शिफा देता फिरता था, वो शैतान के जुल्म में थे। तो ये यसु के मकसद के बारे में समझने की पहली बात है। नंबर दो, अब उसका मकसद बहुत वाजे तौर पर सेनेट जान की इंजील 10:10 में पाते हैं। मैं आपको ये एम्प्लीफाइड तर्जमा से पढ़कर सुनाना चाहूंगा क्योंकि ये उसे बहुत सादा और समझने में आसान बनाता है। सुने ये क्या कहता है। चूर सिर्फ चोरी करने, कत्ल करने और तबाह करने के लिए आता है। ये यसू के अल्फाज हैं। यसू ने ये कहा, चूर सिर्फ चोरी करने, कत्ल करने और तबाह करने के लिए आता है। मैं आया हूं ताकि वो जिंदगी हासिल करें और उसका लुत्फ उठाएं। क्या आपने कभी सोचा था कि लफ्ज वो लुत्फ उठाएं बाइबल में होगा? ये वही मौजूद है। ये कहता है मैं आया हूं ताकि वो जिंदगी हासिल करे और उसका लुत्फ उठाएं और उसे भरपूर तरीके से हासिल करें यहां तक कि वो बह जाए। उसका मतलब है जब तक आप दूसरों को अच्छी चीजें बांटने वाले ना बन जाएं और दूसरों की जिंदगी को जीने के काबिल ना बनाए, तो आप एक भरपूर जिंदगी गुजारते हैं। खुदा ने खुद को आप में जाहिर किया और फिर आपके जरिए दूसरों की मदद करने के लिए पहुंचता है ताकि वो भी जिंदगी से भरपूर हो जाए। से देखें, यसु कहते हैं मैं इस मकसद के लिए आया हूं, मैं आया हूं ताकि वो जिंदगी हासिल करें और उसका लुत्फ उठाएं और उसे भरपूर तरीके से हासिल करें यहां तक कि वो बह जाए। ओ पहले वो शैतान के कामों को तबाह करने के लिए आया। तो अगर कभी आपके जिस्म में, आपके घर में, आपकी जिंदगी में शैतान का काम जाहिर हो तो यसु का मकसद उसे खत्म करना था, इसीलिए वो आए, इसीलिए वो आए। दूसरी बात, वो आपको जिंदगी देने के लिए आए। अब देखे, ना सिर्फ आपको शैतान से आजाद करने के लिए और फिर अब दोबारा वही करे जो शैतान चाहता है और वो आपकी जिंदगी को दोबारा तबाह कर दे, नहीं, वो आपको मुकम्मल जिंदगी देता है ताकि आप इस जिंदगी का लुत्फ उठा सके जो खुदा ने आपको दी है और हमेशा सेहतमंद रहे। नंबर तीन, اور یہ بہت اہم ہے، اور یہ ہر چیز کو شامل کرتا ہے جو یسوع کرنے آئے تھے۔ یہ سب سے بڑا ہے۔ میں آپ کو ایک یوحنا 1 سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں آیت 1 سے آیت 3 تک پڑھوں گا، پھر آپ کو 2 اور آیات کی طرف لے جاؤں گا۔ جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے دیکھا، جسے ہم نے سنا، جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہ یوحنا ہے، یسوع کے شاگردوں میں سے ایک، جس نے یہ لکھا۔ جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا، جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جسے ہم نے غور سے دیکھا، اور ہمارے ہاتھوں نے زندگی کے کلام کو چھوا۔ پھر وہ یہ دیکھو کوسین میں وہ کہتا ہے، کیونکہ زندگی ظاہر ہوئی تھی۔ یہ جگہ بہت بڑی ہے، تم جانتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم زندہ ہو، اور جب تم پودوں اور جانوروں کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو کہ ان میں زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تم زندہ چیزوں کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ زندہ ہیں، لیکن زندگی کی اصل کیا ہے؟ کون جانتا ہے زندگی کی اصل کیا ہے؟ کسی نے کبھی زندگی تخلیق نہیں کی، وہ انسانی جسم بنا سکتے ہیں، وہ پودے بنا سکتے ہیں، لیکن زندگی کا کیا؟ کسی نے کبھی زندگی نہیں بنائی۔ وہ صرف ایک جاندار سے زندگی لے کر دوسرے میں ڈال سکتے تھے، لیکن زندگی کا اصل منبع انسان خود نہیں جانتا، وہ اسے بنا سکتا ہے۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، یہ کہتی ہے کیونکہ زندگی ظاہر ہوئی۔ زندگی ظاہر ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ زندگی اوشیدگی سے باہر آئی اور ہمیں دکھائی گئی۔ تصور کریں کہ اگر آپ نے کچھ دیکھا، جو بھی وہ چیز ہو، اور وہ چیز آپ سے بات کرے اور کہے، میں زندگی ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، آپ کیا سوچیں گے؟ اور پھر کہے، میں آپ کے وجود کا ذمہ دار ہوں۔ اگر یہ سچ ہو تو آپ کیا سوچیں گے؟ اگر یہ سچ ہو کہ آپ نے کوئی مادہ، کوئی توانائی دیکھی، اور وہ توانائی آپ سے بات کرے اور کہے، میں زندگی ہوں، آپ کیا سوچیں گے؟ اور یہ کہے، میں تمام جانداروں کی زندگی کا ذمہ دار ہوں، آپ کیا سوچیں گے؟ خیر، یہ سنت جان کے انجیل میں ہوا، باب 14 آیت نمبر 6 میں۔ دیکھیں، عیسیٰ نے اس سے کہا، عیسیٰ کسی سے بات کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں راستہ ہوں، سچائی ہوں، اور زندگی ہوں، کوئی شخص باپ کے پاس نہیں آتا مگر میرے ذریعے۔ کہتا ہے کہ کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچتا مگر میرے ذریعے۔ یہ ایک حیرت انگیز اعلان ہے۔ کون ایسی بات کہنے کی جرت کر سکتا ہے؟ لیکن اس نے اسے ثابت کیا، اس نے اسے ثابت کیا۔ ایک آدمی جس کا نام لزر تھا، 4 دن سے مردہ تھا۔ عیسیٰ وہاں پہنچے، اس آدمی کو دفنایا جا چکا تھا۔ جب عیسیٰ وہاں پہنچے تو انہوں نے آدمی کو نام سے پکارا اور کہا، لزر باہر آؤ، اور وہ آدمی دوبارہ زندہ ہو گیا۔ وہ 4 دن سے مردہ تھا، اور یہ پہلا شخص نہیں تھا جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ وہ کہتا ہے، میں راستہ ہوں، سچائی ہوں، اور زندگی ہوں۔ یوحنا ہمیں یہ حیرت انگیز بات بتا رہا تھا۔ ہم ایک یوحنا 1 کی طرف واپس جاتے ہیں، اور ہاں، یہ کہتا ہے کیونکہ زندگی ظاہر ہوئی۔ ईसा कहता है मैं जिंदगी हूं, तो अब योहना हमें बताता है जिंदगी जाहिर हुई और हमने इसे देखा। योहना कहता है हमने जिंदगी को जाहिर होते देखा। एक आदमी हमारे सामने आया, इसका नाम ईसा, वो जिंदगी है। यही योहना कह रहा है, जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा, और गवाही देते हैं और तुम्हें दिखाते हैं। वो मुझे ये बहुत पसंद है, प्यारे खुदावन, ये हैरत अंगेज है, और तुम्हें दिखाते हैं। वहां लफ्ज दिखाते हैं का मतलब है तुम्हें ऐलान करते हैं। वो अबदी जिंदगी जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई, ये गैर मामूली है। लेकिन अगला हिस्सा देखें, जो कुछ हमने देखा और सुना है वो तुम्हें बताते हैं ताकि तुम भी हमारे साथ शराकत रख सको। ये कहता है ताकि तुम हमारे साथ शामिल हो सको। क्यों? वो तुम्हें बता रहा है कि ये मजहब नहीं है, वो ये इस्लाम से ईसाइत में तब्दीली नहीं है, ये मजहब की बात नहीं है, ये एक मजहब से दूसरे मजहब में तब्दीली नहीं है, नहीं
नहीं, ये मजहब की तब्दीली नहीं है,
ये सच्चाई का ऐलान है। उसे देखो, वो कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है वो तुम्हें बताते हैं ताकि तुम भी हमारे साथ शराकत रख सको। वो कहता है आओ और हमारे साथ शामिल हो जा। और वाकई हमारी शराकत बाप के साथ है और उसके बेटे यसु मसीह के साथ है। ये हैरत अंगेज है, हमारा रिश्ता बाप और उसके बेटे यसु मसीह के साथ है। मैं आपको एक लम्हे में बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन पहले एक और आयत की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक करनथियों 1:9 की तरफ ले चलता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। खुदा वफादार है जिसके जरिए आपको इसके बेटे हमारे खुदावंद यसु मसीह की रफाकत में बुलाया गया। वो कहता है कि यसु के जरिए आपको रफाकत में बुलाया गया है। खुदा ने आपको अपने बेटे यसु मसीह के साथ रफाकत में बुलाया है। कहता है खुदा जिसके जरिए आपको रफाकत में बुलाया गया। खुदा वफादार है तो इसके जरिए आपको यसु मसीह के साथ रफाकत में बुलाया गया है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपको यसु मसीह के साथ एक होने में लाया गया है। उसका मतलब है कि आपको यसु मसीह के साथ दोस्ती में लाया गया है। ये किस किस्म की दोस्ती है? वो सिर्फ ये नहीं कि आप उसे जानते हैं, बल्कि वो आपको जानता है और अब वो आपके साथ अपनी जिंदगी बांटता है। वो मैं आपको ये दिखाता हूं, रोमियो 8:16 में देखें, रू खुद हमारी रू के साथ गवाही देती है कि हम खुदा के बच्चे हैं। अब यहां एक सीमी कोलन है क्योंकि ये मुकम्मल नहीं हुआ, और जो वो अब कहने वाला है वो इससे जड़ता है जो इसने अभी आपको बताया। देखें अगला, और अगर बच्चे हैं तो वारिस भी। वो कहता है कि रू गवाही देती है कि हम खुदा के बच्चे हैं। अगर हम खुदा के बच्चे हैं तो इसका मतलब है कि हम वारिस हैं, खुदा के वारिस। फिर वो कहता है और मसीह के साथ शरीक वारिस। ये हैरान कौन है शरीक वारिस? इसका मतलब है जो कुछ यसु के पास है, जो कुछ यसु का है, आप इसके साथ मिलकर इसके मालिक हैं, उसके साथ मिलकर। ना 50/50, ना 30/70, ना 10/90, ना कोई फीसद। वो फीसद मैं तकसीम नहीं कर रहा, नहीं, शरीक वारिस होने का मतलब है 100% मिलकर।
वाह,
यानी जो कुछ इसके पास है आपको इस पर इसी तरह हक है जैसे इसको हक है। ये खुदा का फर्ज है, इसीलिए मजहब के लिए इसे समझाना मुश्किल है। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत वसी है, उसे देखो। और अगर बच्चे, अगर हम खुदा के बच्चे हैं, वो कहता है तो हम खुदा के वारिस हैं और मसीह के साथ शरीक वारिस हैं। अगर हम इसके साथ दुख उठाएं, अगर आपको यीशु मसीह के लिए इसकी खातिर सताया गया है, तो वो कहता है फिक्र ना करो। क्यों? वो कहता है ताका हम भी इकट्ठे जलाल पाएं। खलील दिया, तो ये वो बहुत बहुत अहम सच्चाइयां हैं जो यीशु के इस दुनिया में आने के बारे में हैं। क्या ये आपकी जिंदगी में पूरा हुआ है? क्या ये आपकी जिंदगी में पूरा हुआ है? क्या आपकी जिंदगी में शैतान के काम तबाह हो चुके हैं? यीशु ने इसे पूरा किया है, उसने सब कुछ मुकम्मल कर दिया है, ये सब हो चुका है। लेकिन क्या आपने उसे कबूल किया है? क्या आपने उसे हासिल किया है? वो आपको जिंदगी देने आया था, क्या आपने वो जिंदगी हासिल की? वो आपको अपने साथ शरीक वारिस बनाने आया था, क्या आपने उसे कबूल किया? और
रहें, अस्टर करिस जल्द वापस आएंगे। इंसानी जिंदगी गुनाह के ताबे है, लेकिन खुदा की कसम की जिंदगी अवधि जिंदगी देती है।
आपकी मसीही जिंदगी वाकई उस वक्त शुरू होती है जब आप शोरी तौर पर यीशु की रबूबियत का ऐलान करते हैं। वो आपके जहन पर रब बन जाता है, आपके जिस्म पर रब, आपकी रूह पर रब।
पास्टर क्रिस के इस बरवक्त पैगाम में मसीहियत में तीन अहम सच्चाइयां आप दरियाफ्त करेंगे कि खुदा ने आपको कैसे चुना है और आपको अबदी जिंदगी दी है। पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी ऐप पर डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। जो लो वर्ड ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए दस्तियाब है।
देखें, एक मुकम्मल डिजिटल माहौल है जो जिंदगी की हकीकत, खुदा के कलाम, खबरें, खेल, तकरीबात और बहुत कुछ की बाजगश्त करता है। ये मुतनावे प्लेटफॉर्म आपको चलते फिरते मुकम्मल वीडियो मवाद फराहम करता है। देखें, आपके प्रोग्रामों और तकरीबात के लिए एक बेहतरीन स्ट्रीमिंग तजर्बा फराहम करता है, आपके प्रोग्रामों को दुनिया भर में ले जाकर। हम आपको पादरी क्रिस के साथ तमाम विजारत के प्रोग्राम भी पेश करते हैं, जैसे कि माहाना आलमी कम्युनियन सर्विस, आलमी दुआ का दिन, ये और स्पेशल्स, रिपाथवन, नाजरीन और सामीन नेटवर्क कॉन्फ्रेंस, फिलेंग्स टर्मस लाइव शिफा खिदमत और बहुत कुछ। देखें, आपको एक फर्द, आप ग्रुप के तौर पर लाइव शो की मेजबानी करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। अपने कारोबार को सरहदों से आगे ले जाएं, अपने कारोबार, मसनुआत, आखिदमात को देखें पर इश्तेहार देकर ताका आपकी मुर्द और मुनाफा में इजाफा हो। देखें से अपनी रोजाना की तहरीक हासिल करें हैरत अंगेज मवाद के साथ, जो खबरों, खेलों, खाने और पेस्ट्रीज, फैशन और तर्ज जिंदगी तक फैला हुआ है और बच्चे भी पीछे नहीं रहते। जल्दी करें और ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर पर सी ऐप डाउनलोड करें। देखें टीवी हुदूद से परे।
खुश आमदीद। मुझे यकीन है कि आज खुदा आपको छुएगा और आपको शिफा देगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ए बाप, खुदावंद यीशु के नाम में मैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ जो इस प्रोग्राम के ज़ेर असर हैं। मैं दुआ करता हूँ कि वो शिफा पाए, बेहतर हूँ और खुदावंद यीशु के नाम में सेहत याब हूँ। आपके जिस्म में शिफा को अभी शिफा पाएं। मैं हुक्म देता हूँ कि आपके सर के ताज से लेकर आपके पांव के तलवों तक दर्द आपको छोड़ दे। मैं हुक्म देता हूँ कि रसौलियां खुदावन यसू के नाम में मर जाए آپ کے جسم میں شفا ہو۔ میں کان میں رسولی کو ملامت کرتا ہوں، کسی کو سننے میں دشواری ہے کیونکہ کان میں رسولی ہے۔ میں ان شیطانوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ خداوند یسوع کے نام میں آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں، شفا پائیں۔ اپنے جسم کے ارد گرد ہاتھ رکھیں اور کہیں، میں خداوند یسوع کے نام میں اپنے جسم میں شفا قبول کرتا ہوں۔ خدا کی حمد ہو، شکریہ خداوند، شکریہ خداوند، جی ہاں یسوع کے نام میں شفا پائیں، آمین۔ ہمیں بتائیں کہ خداوند نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ اسکرین پر دیے گئے پتے کا استعمال کریں تاکہ آپ ہم سے رابطہ کر سکیں۔ ہمیں آپ کی طرف سے سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اب آپ کو جانے سے پہلے ہمارے پاس کچھ مواد ہیں جو آپ کو آپ کی مسیحی زندگی میں بڑھنے میں مدد کریں گے۔ یہ کتابچہ معجزہ کیسے حاصل کریں اور اسے برقرار رکھیں کے عنوان سے ہے۔ بہت سادہ چیزیں جو آپ خدا کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن آج ہی اپنا حاصل کریں۔ اگر آپ کال کریں یا ای میل بھیجیں یا اسکرین پر دی گئی تفصیلات پر پیغام بھیجیں تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور آپ کو کم از کم یہ معلوم ہو جائے گا کہ کتاب کیسے حاصل کی جائے۔ یہ دیکھیں اپنے ایمان کو کیسے کام میں لائیں۔ آپ کے لیے ایک اور اہم کتاب، اور آخر میں مؤثر طریقے سے دعا کیسے کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں اور دعا کے جوابات حاصل کریں۔ یسوع کے الفاظ کو یاد رکھیں جب انہوں نے کہا، مانگو اور پاؤ تاکہ تمہاری خوشی مکمل ہو۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ کچھ خیالات شیئر کیے ہیں اور آپ کے ایمان کو بیدار کیا ہے اور شفا حاصل کی ہے۔ میں آپ سے دوبارہ ملنے کا منتظر ہوں۔ تب تک معجزات کے ماحول میں جیتے رہیں۔ اگر آپ نے کبھی نجات حاصل نہیں کی، اگر آپ نے کبھی مسیح کو اپنے دل میں قبول نہیں کیا، اگر آپ نے کبھی اس مسیح کی زندگی کا تجربہ نہیں کیا جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا لمحہ ہے۔ یہ الفاظ کہیں کہیں، اے خداوند خدا، میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں جو خدا کا بیٹا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بچانے کے لیے مرے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا نے انہیں مردوں میں سے زندہ کیا اور وہ آج زندہ ہے۔ میں اپنے منہ سے اقرار کرتا ہوں کہ یسوع مسیح آج سے میری زندگی کے خداوند ہے، اور ان پر اپنے ایمان کے ذریعے میں اپنی روح میں، اپنے دل میں ابدی زندگی حاصل کرتا ہوں۔ شکریہ خداوند میری جان بچانے کے لیے۔ اب میرے پاس ابدی زندگی ہے۔ اب میں خدا کا بچہ ہوں۔ میں دوبارہ پیدا ہوا ہوں۔ شکریہ خداوند۔
اگر آپ نے ابھی پادری کرس کے ساتھ یہ دعا کی ہے یا اگر آپ نے ابھی اپنی شفا حاصل کی ہے، تو براہ کرم اس وقت اپنی اسکرین پر دکھائے جانے والے نمبر پر کال کریں یا callcentral8lowyworld360.com پر ای میل بھیجیں۔ خدا آپ کو برکت دیں۔